दिन भर 4 जून दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। लंदन हमले की दुनिया भर में निंदा, मरने वालों की संख्या हुई 7। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा वक्त पर होंगे चुनाव।
The whole of our country needs to come together to take on this extremism.
चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी गेंदबाजों पर बरसा रोहित शर्मा का बल्ला, बारिश की वजह से घटे ओवर। अपडेट के लिए सीधे चलेंगे बर्मिंघम।
और इस छक्के के साथ इन्होंने 50 रन पूरे किए।
और संग संग गुनगुनाओगे मैं आज बात मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी की। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। लंदन पुलिस का कहना है कि शनिवार को शहर में हुए आतंकवादी हमलों के सिलसिले में उसने अलग अलग जगहों से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल लंदन के लंदन ब्रिज और बरो मार्केट में हुए हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 48 अन्य घायल हो गए थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने लंदन हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि अब ये कहने का वक्त आ चुका है कि बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि आतंकवाद निरोधी रणनीति की समीक्षा की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्र प्रमुखों ने लंदन में आतंकवादी हमलों की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि लंदन में हमले स्तब्धकारी और व्यथित करने वाले हैं। मोदी ने कहा कि मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के प्रति दुआएं हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने लोगों से न डरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो पिछली रात की घटना से भयभीत और गुस्से में हैं, लेकिन आतंकवाद कभी नहीं जीतेगा। सादिक खान ने कहा, शहर के लोगों के दुख और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात का गुस्सा है कि इन कायर आतंकवादियों ने जानबूझकर निर्दोष लंदन वासियों को निशाना बनाया। आतंकवादियों के कृत्य को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें कभी भी जीतने नहीं देंगे और न ही उन्हें अपने शहरों में डर फैलाने देंगे। ये थे लंदन के मेयर सादिक खान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन हमले की निंदा करते हुए ब्रिटेन को सहायता की पेशकश की है। साथ ही ट्रंप ने ट्वीट कर लंदन के मेयर के उस बयान की आलोचना भी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश ब्रिटेन के साथ है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि न केवल सीमाओं पर बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी यूरोप एकजुट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की अपील की। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी घटना की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। फिलीपींस पुलिस का कहना है कि उसने शुक्रवार को मनीला के एक कैसीनो को आग लगाने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। इस घटना में 37 लोगों की मौत हो गई थी। हमलावर नकाब पहने हुए गेमिंग रूम में दाखिल हुआ था और वहां मेजों को आग लगा दी थी। कई घंटों के बाद हमलावर भी मृत पाया गया था। मनीला के पुलिस प्रमुख ऑस्कर अल्बाल्डे ने कहा कि हमलावर का नाम जेसी जेवियर कार्लोस था। उन्होंने कहा,
After thorough review of details, photos, CCTVs,
सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हमलावर की पहचान हुई। परिवार के लोगों ने भी उसकी शिनाख्त कर दी है। हमलावर कार्लोस 43 साल का था और वित्त विभाग का पूर्व कर्मचारी था। ये थे मनीला के पुलिस प्रमुख अल्बाल्डे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि महिलाओं को लड़ाकू अभियानों में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में रावत ने कहा कि महिला सैनिकों की नियुक्ति होगी और उन्हें लड़ाकू भूमिका में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत सरकार का नोटबंदी का फैसला अगर सफल रहता है तो इससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी की सफलता से ज़्यादा लोग टैक्स दायरे में आ सकेंगे। बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है। बारिश के कारण इस मैच में ओवरों की संख्या 50 से घटाकर 48 कर दी गई है। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव।
बिगल्स बज रहे हैं और ड्रम बज रहे हैं और ये है एडबेस्टन का नजारा। इंडिया 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 इंडिया। Who will win today?
पाकिस्तान।
पाक भारत दोस्ती हमेशा रहेगी।
इंडिया हमेशा जीतता है, पाकिस्तान से इंडिया ही जीतेगा।
ये आवाजें उस सोच को सही साबित करती हैं जिनमें कहा जाता है कि जिंदगी चलने का नाम है। लंदन हमले के कुछ घंटे बाद लंदन से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच के लिए सुबह से ही गजब का उत्साह दिख रहा है। सुरक्षा की चिंता और गम की धुंध कहीं पीछे छूट गई है। हम लंदन हमले की भी बात करेंगे लेकिन पहले बात भारत पाकिस्तान मैच की, जहां टॉस गंवाने के बाद भारतीय ओपनरों ने उम्दा बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 91 और शिखर धवन ने 68 रन बनाए। बारिश ने खलल डाला और मैच को 48-48 ओवर का कर दिया गया है। सीधे चलते हैं बर्मिंगम के एजबेस्टन स्टेडियम जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा। विदित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 48 ओवर में से 43.2 ओवर का खेल हो चुका है, 244 रन भारत ने बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सुबह से आप वहाँ हैं, क्या लगता है फैंस को सिर्फ मौसम की फिक्र है और कोई चिंता नहीं है?
बिल्कुल, मौसम की भी फिक्र नहीं है वासिल जी यहाँ पर, और एडबेस्टन के ग्राउंड के बाहर तो बहुत सारी स्क्रीन है ही, और एक बड़ी स्क्रीन लगी है बर्मिंगम के काउंसिल हाउस के बाहर जहाँ पे लोगों के लिए चेयर्स डाली गई हैं, लोग बैठे हुए हैं और बड़ी स्क्रीन पर नजारा देख रहे हैं मैच का। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ और वहां पर बहुत सारे लोग हैं छाते के बिना, छाते के साथ, और बस वो मैच का आंखों देखा हाल देखे जा रहे हैं। और जैसे ही कोई भी रन या छक्का पड़ता है, जैसे कि लास्ट छक्का मारा था युवराज सिंह ने, तो सारे एकदम से स्क्रीन के सामने पहुंच जाते हैं और नाचने लगते हैं। गजब का उत्साह है पाकिस्तान के फैंस के लिए और भारत के फैंस के लिए भी। और यहां पर अब खाने पीने की व्यवस्था है, पूरा मौसम बारिश का हो रहा है, कभी धूप होती है कभी बारिश हो जाती है, और बहुत ही कमाल का मौसम यहाँ पर है। और
विदित, हम आपके पास लौटेंगे और मैच पर बात करेंगे। आदेश कुमार गुप्त भी दिल्ली में स्टूडियो में हमारे साथ होंगे, लेकिन हम बात करते हैं ब्रिटेन में ही। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जहां फिक्र है, दर्द का साया है और चरमपंथ से मिल रही चोट से निपटने की चुनौती है। मैनचेस्टर में करीब 2 हफ्ते पहले हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में आज होने वाले कंसर्ट के कुछ घंटे पहले यानी कल लंदन में एक बार फिर हमला हुआ। लंदन हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। करीब 50 लोग घायल हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घायलों में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग हैं। पूरी दुनिया ने हमले की निंदा की है। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि हमले के बाद भी आम चुनाव गुरुवार को ही होंगे। पूरा ब्यौरा सुनिए दिनेश उप्रेती से।
पवित्र आत्माएं पूरी दुनिया को शांति का आशीर्वाद दें, युद्ध और आतंकवाद के घावों को भरें जिसने कल रात लंदन में मासूम लोगों को निशाना बनाया। आइए हम पीड़ितों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। ये थे पोप फ्रांसिस, जिन्होंने इटली के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर लंदन हमले में मारे गए लोगों और घायलों के लिए प्रार्थना की। वहीं कल हुए हमले के बाद देश के लोगों से मुखातिब हुई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंसा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। टेरेसा मे ने कहा कि आम चुनाव गुरुवार को ही होंगे। उन्होंने कहा,
The whole of our country needs to come together to take on this extremism and we need to live our lives not
इस अतिवाद के खिलाफ पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। हमें अलग थलग समाज की तरह रहने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट यूनाइटेड किंगडम की तरह रहने की आवश्यकता है। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। स्थानीय समय के मुताबिक रात 10 बजे लंदन ब्रिज पर एक सफेद वैन ने पैदल चल रहे लोगों पर हमला किया। पास की ही बरो मार्केट में 3 संदिग्धों ने लोगों पर चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गोली मारी जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हमले को लेकर पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 3 महीने के दौरान ब्रिटेन में तीसरा हमला है। मार्च में वेस्टमिंस्टर में कार और चाकू के जरिए हमला किया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 2 हफ्ते पहले मैनचेस्टर में हुए आत्मघाती धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दुनिया भर के देशों ने लंदन में हुए हमले की निंदा की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि हम आपके साथ हैं, अमरीका मदद के लिए जो कुछ कर सकता है वो करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ ब्रिटेन के साथ खड़ा है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि शोक की इस घड़ी में यूरोप एकजुट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए एकजुट प्रयास होने चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मरने वालों के प्रति सहानुभूति जाहिर की है। लंदन में हुए हमले के बाद ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अस्थायी तौर पर चुनाव प्रचार रोक दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि गुरुवार को होने वाले चुनाव के लिए सोमवार से प्रचार पूरी तरह शुरू हो जाएगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। ब्रिटेन में मौजूद बीबीसी संवाददाता वंदना लंदन हमले के बाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले उनसे बात की और सबसे पहले हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछा।
जी बिल्कुल, उसके बाद से लगातार पुलिस इस पे इसकी जांच कर रही थी। जो 3 संदिग्ध हमलावर थे उसको पुलिस ने बताया था कि उन तीनों को हमले के कुछ समय के अंदर ही उन्हें मार दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कुछ रेड्स हुई हैं, खासकर जो हमलावर जिसको पुलिस मान रही है उसके उनके घर पे, जिसके बाद से कम 12 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गुरुवार को होने वाले हैं आम चुनाव वो तय वक्त पर होंगे, तो क्या ब्रिटेन इसके लिए तैयार है?
जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को सुबह भी बताया था कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एक बड़ी अहम, जिसे यहाँ कोबरा मीटिंग कहा जाता है, तमाम जो इंटेलिजेंस ऑफिसर वगैरह की वो करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो चुनाव है वो तय समय पर ही होंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि शायद हमलावर भी यही चाहते हैं कि चीजें उस तरह से न चले, तो यही एक तरह का जवाब होगा। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया, क्योंकि ये लगातार इसी साल तीसरा हमला है। उन्होंने कहा कि एक तरह से जो बर्दाश्त की जो हद होती है, कट्टरपंथ वर्ड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब वो बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है। यहाँ पे उन्होंने लोगों को एकजुट होने के लिए भी कहा, लेकिन एक तरह से एक कड़ा बयान भी दिया कि अब बहुत हो गया। जाहिर है इसके आगे क्या होगा ये तो किस तरह के कदम उठाए जाते हैं उस पर निर्भर करेगा।
लेकिन ये जो तीसरा हमला है और इसके बाद जिस तरह से पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ रिएक्शन किया, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन जो बार बार हमले हो रहे हैं, क्या लोगों के बीच में डर है? वो क्या सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा कर पा रहे हैं? ब्रिटेन के लोगों की मनोस्थिति इस समय कैसी है?
अगर पहले तो बात करें कि जिस तरह का जो रिस्पांस रहा यहाँ पे जितने पुलिस हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, तो ये समझ लीजिए कि जो पहला फोन कॉल गया होगा पुलिस को, उसके 8 मिनट के अंदर अंदर जो संदिग्ध जो हमलावर थे उनको एक तरह से पकड़ लिया गया था और वो मारे जा चुके थे। तो जिस तरह से बहुत मुस्तैदी से उन्होंने इस चीज का, इस पूरी सिचुएशन को, हालात को हैंडल किया, तो बहुत लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। जहां तक बात है कि लोगों में किस तरह का माहौल है, तो जितनी मैंने बात की, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, तो ये बात जरूर है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक इस बात को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि जो लगातार जो एक कट्टरपंथ है, जो रेडिकलाइजेशन वाला जो एक माहौल है वो बढ़ रहा है, उसको लेके क्या किया जा सकता। बीबीसी संवाददाताओं का मैं तमाम जो नजर रखे उनका सार पड़ रही थी, तो एक बात निकल के आ रही थी कि पहले भी होते रहे हैं हमले यूरोप में, हाँ ब्रिटेन में भी, तो वो ज्यादातर बम धमाके हुआ करते थे, विस्फोट हुआ करते थे, लेकिन अब इस दौरान देखा गया कि एक तरह से सॉफ्ट टारगेट को चुना जा रहा है। जो हमला करने का तरीका बदल गया है कि जहाँ पे आपको बहुत बहुत एक सोफिस्टिकेटेड या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि बम बनाएंगे या उसको कहीं विस्फोट किया जाएगा, अक्सर की गाड़ी लेके कहीं मार दिया गया या चाकू से खोक दिया गया, इस तरह का जो नया चलन है जिसको रोकना ज्यादा मुश्किल होता है, तो इन सब चीजों पे लगातार लोगों में बहस हो रही है।
जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता वंदना। एक बार फिर बात करते हैं मैच की, भारत पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में मैच चल रहा है। स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी, भारतीय पारी
आखिरी ओवरों में है। आदेश जी, कहां तक जाएगा स्कोर, क्या लग रहा है?
देखिए 300 रन तक तो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं आखिरी ओवर तक पहुंच रही है, क्योंकि 46वां ओवर चल रहा है और 268 रन दो विकेट के नुकसान पर हैं।
इस बीच एक छक्का और लगा दिया युवराज सिंह ने।
जी, युवराज सिंह ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। दरअसल आज उन्हें मौके भी मिले दो, और इसके अलावा विराट कोहली का भी आसान कैच छोड़ा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फील्डर्स जो हैं अब उनके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था उसका उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारत को 250 रनों तक रोक कर रखा जाए।
आदेश जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे जब भारतीय पारी पूरी होगी, और विदित मेहरा से भी हम जुड़ेंगे, सीधे एजबेस्टन स्टेडियम चलेंगे। लेकिन अब आपको और अपने बाकी श्रोताओं को कुछ उनसे बात कर लेते हैं, गीत संगीत गाने और गुनगुनाने की। संग संग गुनगुनाओगे कि आज की कड़ी में संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र समेट कर लाए हैं सलिल चौधरी की यादें। समीक्षक सलिल चौधरी को विचारशील कलाकार के तौर पर सराहते हैं, लेकिन फैंस के लिए तो वो एक ऐसे संगीतकार हैं जिनकी रची धुनें सदाबहार हैं। इस खास पेशकश के प्रस्तुत करता है मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
एक पढ़े लिखे संगीतकार के रूप में अगर किसी संगीतकार को याद किया जाता है तो वे सलिल चौधरी हैं।
मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी।
सलिल चौधरी एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने साम्यवादी विचारों को अपने संगीत का आधार बनाया। उस जमाने में जब देश आजाद हो रहा था और देश में तमाम तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, ऐसे में सलिल चौधरी युवा हो रहे थे, और उस युवावस्था में उनके जीवन में मार्क्सवाद या वामपंथ संगीत के संस्कार लेकर आया।
प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए,
मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए,
मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।
इन गीतों को सुनते हुए ये बात आसानी से देखी जा सकती है कि सर्वहारा वर्ग के प्रतीक को कैसे संगीत अपने दुनिया में रूपायित करता है। सलिल चौधरी जब संगीत बनाते हैं तो उनके संस्कारों में इप्टा भी पूरी तरह शामिल है। इप्टा में वे 1944 में गए, और उस दौरान उनकी दोस्ती मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी और एके हंगल से हुई, और ये उनके पूरे संगीत मयार को देखते हुए समझा जा सकता है कि कैसे जब तमाम सारे दूसरे फनकार अपने संगीत को जादुई यथार्थवाद की ओर ले जा रहे थे या कुछ रेशमी मुलायम एहसास के साथ संगीत बुन रहे थे, ऐसे में थोड़ी खुरदुरी जमीन पे चलते हुए, थोड़े नंगे पांव, गरीबों शोषितों वंचितों की बात करता हुआ संगीत खड़ा होता है और वो सलिल चौधरी की कला की दुनिया बना देता है।
जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच।
उन्हें उनके आरंभिक रचनाओं में गण संगीत, गण संगीत यानी आम जनता के लिए रचा जाने वाला इप्टा का वैचारिक संगीत दिखाई पड़ता है, उसकी छाया गिरती हुई दिखती है। और ऐसे में ये याद करना भी महत्वपूर्ण है कि सलिल चौधरी ने अपने फिल्मी और गैर फिल्मी करियर में क्वायर स्थापित किए थे और बॉम्बे यूथ क्वायर में उन्होंने कई ऐसे गीत बनाए जिन्हें उस दौर में मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे और रूमा गांगुली की आवाजें मिली थी। बाद में ये काम उन्होंने कोलकाता यूथ क्वायर के लिए किया। और अगर क्वायर सॉन्ग का सबसे सुंदर प्रतीक देखना है तो हमें परख के इस गीत को सुनना चाहिए। इस तरह देखें तो सलिल चौधरी की भूमिका को हम वामपंथ और कला के उस संतुलित बिंदु पर केंद्रित देख सकते हैं जहां रोमान और वैचारिकी दोनों एक साथ चले हैं। रोमांस को किस तरीके से बौद्धिकता प्रभावित करती है या बौद्धिक रहते हुए कैसे मुलायमियत पेश की जा सकती है, इसके लिए सलिल चौधरी की हर दूसरी धुन सुनी जा सकती है।
दूर कोई जैसे शहनाई बजाए, प्यार के साथी मेरे प्यार के साथी, कोई जतन कर अब ये शाम न जाए। झिम 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 पदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा जा रे घर मोरे पिया, सन 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 हवा डोले, घूंघट मोरा खोले,
रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सो जाल बिछाए, आँखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए।
सलिलदा अकेले ऐसे अनूठे संगीतकार भी हैं जिनके यहाँ विदेशी सिम्फनीज और वेस्टर्न हारमोनी के नए से नए प्रयोग देखे जा सकते हैं। और खासकर वे जब ऐसा संगीत बनाते हैं तो उनकी वैचारिकी में या उनके मानस में कहीं ढेरों ऐसी धुनों की परिकल्पना मौजूद रहती है।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
सलिल चौधरी के बारे में ये भी मशहूर रहा कि अधिकांश गायक गायिकाओं को उनके गीतों को गाने में कठिनाई महसूस होती थी, एक दिक्कत का भाव जो उनसे पहले सज्जाद हुसैन और गुलाम हैदर के संगीत को गाते हुए उस दौर के गायक गायिकाओं को होती थी। और ये कठिनाई दरअसल उस लय का पैटर्न बुनने के चक्कर में सलिलदा क्रिएट करते थे जो सामान्य ढंग से पारंपरिक धुनों से दूरी बरतता है। ऐसी धुनें जो प्रयोगधर्मी कही जा सकती हैं, ऐसी धुनें जिनमें नवाचार या इनोवेशन की गुंजाइश है, और ऐसी धुनें जो अपने समय और समाज से बहुत आगे चलती हुई धुनें थी जो उस दौर में दूसरा संगीतकार नहीं बना रहा था। यहाँ पर ऐसी धुनों के एक दो उदाहरण आपको सुना रहे हैं।
मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, मिला है किसी का झुमका, बलवा
आज सलिल चौधरी नहीं है, लेकिन उनका संगीत अमर है और इन गीतों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि पिछले दौर में जो हमारा 50-60 साल पीछे गुजरा हुआ संगीत का जमाना है, उसमें किस तरह का नवाचारी संगीत रचा जा रहा था, जिसे गाने के लिए हमारे महान पार्श्व गायक गायिकाओं को भी कई बार दिक्कत आती थी।
जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
श्रोताओं, एक पहेली हमारे सामने भी है कि ये कड़ी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। कार्यक्रम का संपादन किया था अजित सारथी ने। और एक बार फिर रुक करते हैं भारत पाकिस्तान मैच का। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में हैं और ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं विदित मेहरा। विदित, हमने सुबह आपका फेसबुक लाइव देखा था और देखा था कि भारतीय फैन उछल रहे हैं, तो इस समय तो जब भारत ने 290 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं 47वें ओवर में, अभी क्या स्थिति है?
अभी यहाँ पर फिर से वही माहौल है, जितने भी भारतीय फैंस हैं वो सारे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि अभी अभी विराट कोहली ने एक छक्का जड़ा है और कमाल का स्कोर बना दिया है उन्होंने। युवराज आउट हुए, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए क्रीज पर, तो यहाँ पर तो कमाल का माहौल है, मतलब कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और अभी शोर मच रहा है। अभी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, तो मतलब कमाल का है। बस एक ओवर और होने, एक ओवर बचा हुआ है और उसके बाद फिर पाकिस्तान बैटिंग करेगी और उसके काफी पाकिस्तानी फैंस भी हैं यहाँ पे, और जब जब जैसे कोई विकेट गिरती है इंडिया की तो वो उठ के शोर मचाते हैं, और जैसे कोई छक्का पड़ता है तो भारतीय फैंस जाके शोर मचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत एनर्जाइज जिसे कहते हैं, इतनी सारी एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ सब देखने को मिल रही है, ये बर्मिंघम काउंसिल हाउस के बाहर जो बड़ी स्क्रीन है वहां पर।
जी, युवराज सिंह भी अभी चौके छक्के छोड़ा कर गए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में आदेश कुमार गुप्त जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि इन्होंने 300 से ऊपर स्कोर जाएगा इसका प्रेडिक्शन किया था, आखिरी ओवर अभी बाकी है। क्या लग रहा है कि एक तरफा जो लगातार पिछले हम कई मैचों से देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के, आदेश जी, एक तरफा ही होगा ये?
देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से रन इस विकेट में हैं और युवराज को हालांकि मौके मिले, कप्तान विराट कोहली को भी, वो एक दबाव भारत और पाकिस्तान के बीच जो रहता है। लेकिन तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, जिन्होंने 91 रन बनाए, उसके बाद शिखर धवन ने 68 रन बनाए, और पहले विकेट के लिए ये जो 136 रन जुड़े, ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद युवराज सिंह ने 53 रन बनाए, कोहली अपना अर्धशतक बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव और बुमराह किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और बुमराह और हार्दिक पांड्या को इस वजह से रखा गया क्योंकि इनका गेंदबाजी एक्शन इस तरह का है कि बल्लेबाज के लिए गेंद खेलना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। और भुवनेश्वर कुमार क्योंकि गेंद को स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, उमेश यादव ने निरंतरता दिखाई है, गति है और स्विंग भी है, और उसके बाद रविंद्र जडेजा फिरकी का जादू
जी।
तो कुल मिलाकर अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है
जी, आदेश जी। और विदित से जान लेते हैं, बॉलर्स का नंबर तो बाद में आएगा कि बल्लेबाजी में, विदित हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, भारत के जितने बल्लेबाजों ने अभी तक बल्लेबाजी की है, किसकी बल्लेबाजी वहाँ फैंस ने सबसे ज्यादा एंजॉय की है?
अभी तो सब खुश हो रहे हैं क्योंकि पांड्या ने लगातार दो बॉलों में दो छक्के जड़ दिए हैं और 13 रन बनाए हैं तीन बॉलों में, तो कमाल की बैटिंग तो हार्दिक पांड्या ने की है। और युवराज सिंह जिस जब जब छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, लोग खुशी से हो रहे थे। और अभी तो मैं ये कहूंगा कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से क्रीज पे जमे हैं, दो बॉलों में दो छक्के और चार गेंदें बची हैं, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अगर चल पड़े तो वो सबसे बढ़िया बैटिंग होगी इस इनिंग्स की, इंडिया इनिंग्स की, मैं मानता हूं। और ये तीसरा छक्का भी आप सुन सकते हैं
जी, मैं बिल्कुल लाइव एक्साइटमेंट आपका फील कर रहा हूं। विदित मेहरा और आदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगता है कि हमारा ट्रांसमिशन खत्म होने तक मैच पूरा नहीं होगा, फाइनल स्कोर के लिए श्रोता हमारे bbchindi.com की साइट पे आ सकते हैं और दोनों जो बड़ी खबरें हैं मैच की भी और लंदन हमले से जुड़ी हुई खबरें, श्रोता पल पल की जानकारी ले सकते हैं bbchindi.com पर। आदेश जी, बहुत एक छोटा सा कमेंट, हार्दिक पांड्या कहाँ तक ले जाते दिख रहे हैं स्कोर, क्योंकि स्कोर हम शायद बता ना पाए।
देखिए, जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है तो शायद 325 रन तक भारत का स्कोर बन सकता है,
325 तक बन सकता है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अभी भी तीन गेंदें बाकी हैं और वो लगातार अपडेट bbchindi.com पर जान सकते हैं, क्योंकि bbchindi.com पर हम लगातार मैच से जुड़ा हुआ अपडेट दिखा रहे हैं। फिलहाल स्कोर है 314 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ हैं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।